जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमदीश दिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नेतलीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधिका रमन ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताय की जय। श्री श्री कृष्ण बलदेव की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरी टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद अध्याय 15। अध्याय का नाम है सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश। श्लोक संख्या 35। मेरे विषय बोलिए। कामादिभिरनाविद्धम् प्रशांताखिल वृत्तिया चित्तम ब्रह्म सुखस्पृष्टम् नैवो तिष्ठेत करहि चेत् कामादिभिरनाविद्धम् प्रशांताखिल वृत्तिया चित्तम् ब्रह्म सुखस्पृष्टम् नैवो तिष्ठेत करहि चेत् कामादिभिरनाविद्धम् प्रशांताखिल वृत्तिया चित्तम् ब्रह्म सुखस्पृष्टम् नैवो तिष्ठेत करहि चेत्।
नैवो तिष्ठेत करहि चेत्।
वैष्णव देवियां शब्दार्थ बोलिए, काम आदि भी विभिन्न कामेच्छाओं से अनाविद्धम अप्रभावित प्रशांत शांत अखिल वृत्ति हर तरह से अथवा सारे कार्यों में यत जो चित्तम चेतना ब्रह्म सुख इस पृष्ठम शाश्वत आनंद के दिव्य पद पर स्थित ना नहीं एव निस्संदेह उत्तिष्ठेत बाहर आ सकता है करहि चेत किसी समय। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए, जब मनुष्य की चेतना भौतिक कामेच्छाओं से अदूषित होती है होती है एक वचन है ना, तो वह सभी कार्यों में शांत हो जाती है, क्योंकि मनुष्य नित्य आनंदमय जीवन में स्थित हो जाता है। एक बार इस पद पर स्थित हो जाने पर मनुष्य फिर भौतिक कार्यकलापों की ओर वापस नहीं जाता। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले इस श्लोक के शब्दों को फिर से समझेंगे। इस श्लोक में शब्द क्या लिखा है, काम आदि भीर ना विद्धम, काम आदि, तो आप लोग जानते हैं काम से शुरू होकर के और आगे भी शब्द होते हैं ना, क्या होते हैं काम, क्रोध लोभ मोह। तो जब भगवान यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं काम आदि भी का मतलब है कि काम आदि के द्वारा अनाविद्धम, अनाविद्धम का मतलब है कि विद्ध ना हो। यहाँ पर बात चल रही किसकी, चित्तम, चित्त की बात चल रही है। चित्त जो है कैसा होता है, कैसा हो, काम आदि के द्वारा आविद्ध ना हो। तो यहाँ प्रभुपाद शब्दार्थ हैं बता रहे हैं कि प्रभावित ना हो, अनाविद्धम का मतलब अप्रभावित, विद्ध और अनाविद्ध, विद्ध हो जाए काम क्रोध आदि के द्वारा चित्त विद्ध हो जाए, है ना, एक ऐसी स्थिति होती है। इन यहाँ पर बताया कि जब चित्त कैसा हो जाए, काम क्रोध आदि के द्वारा चित्त आविद्ध ना हो या विद्ध ना हो, आविद्ध ना हो यानी प्रभावित ना हो, है ना। और प्रशांत अखिल वृत्ति यत, यत माने जो वही जो चित्त जो है कैसा हो, प्रशांत अखिल वृत्ति सभी कार्यों में क्या हो जाए, प्रशांत हो जाए, पूरी तरह से प्रशांत हो जाए, मतलब कार्यों में वो उद्विग्न ना हो, प्रशांत चित्त क्या हो जाए, प्रशांत अखिल वृत्ति सभी कार्यों में चित्त जो है प्रशांत हो जाए। एक अशांत होता है चित्त, अशांत होता है ना, कार्य करने में अशांत होता है चित्त, है उसका उल्टा क्या है, प्रशांत, है ना, प्रकृष्ट रूपेण, प्रकृष्ट रूप से शांत चित्त सभी कार्यों में शांत, है ना। क्योंकि कार्यों में क्या होता है, लोभ पैदा होता है, फल की कामना है ना, और उससे हर्ष होता है, जो अनुकूल फल प्राप्त होता है, और जब प्रतिकूल फल प्राप्त होता है तो शोक होता है, है ना, राग द्वेष चित्त में होता है। तो वो ना हो तो क्या हो जाता है, चित्त प्रशांत, सभी कार्यों में चित्त क्या हो जाए, प्रशांत हो जाए। तो पहली बात है काम आदि भी अनाविद्धम, काम क्रोध आदि के द्वारा जब चित्त आविद्ध ना हो, प्रभावित ना हो। फिर दूसरी बात है कि सभी कार्यों में चित्त प्रशांत हो, यानी अशांत ना हो, है चित्तम, तो वो चित्तम है ब्रह्म सुख इस पृष्ठम, ब्रह्म सुख के द्वारा ब्रह्म सुख में स्थित हो जाए, इस पृष्ठम ब्रह्म सुख में स्थित हो जाए। तो फिर क्या होगा, ना एव उत्तिष्ठेत, तो फिर वो उठेगा नहीं, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठेत का मतलब उठता नहीं है, फिर मतलब बैठा ही रहता है फिर, ना उत्तिष्ठेत कर ही चेत, किसी भी प्रकार से फिर वो उठ के खड़ा नहीं होता। उठ के खड़ा होने का मतलब क्या है, विद्रोह है। जैसे अभी आप क्लास में बैठे हैं, है ना, कोई बात बुरी लगे उठ के खड़े हो जाए तो क्या मतलब हुआ, आप विद्रोह कर रहे हैं। तो चित्त जो है फिर प्रशांत हो जाता है, फिर उठ के खड़ा नहीं होता, ना ना एव वो उत्तिष्ठेत है, उठ के खड़ा नहीं होता, फिर कहीं चित किसी भी हालत में उठ के नहीं खड़ा होगा, बैठा रहेगा, मतलब समर्पित है, बैठने का मतलब समर्पण करना। तो चित्त फिर जो है ब्रह्म सुख में स्थित हो जाता है, तो फिर वो बैठ जाता है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य क्या लिखते हैं, शिला प्रभुपाद की ब्रह्म सुख इस पृष्ठम का वर्णन भगवद गीता में भी 1854 हुआ है। श्लोक है ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो दिव्य पद पर स्थित है उसे तुरंत परब्रह्म की अनुभूति हो जाती है और वह पूरी तरह प्रमुदित हो जाता है। इस श्लोक में क्या है, प्रसन्न आत्मा, ये भगवान प्रभुपाद ने जो है गीता का श्लोक उद्धृत किया है, प्रसन्न आत्मा ना। तो इसके अनुवाद में प्रभुपाद क्या लिखते हैं, पूरी तरह प्रमुदित हो जाता है प्रसन्न आत्मा। आत्मा को भी अगर चित्त मान लें, चित्त ही आत्मा का चित्त भी है, तो प्रसन्न आत्मा यानी चित्त उसका प्रसन्न हो जाता है ना, प्रमुदित हो जाता है। ना तो वह शोक करता है और ना कभी किसी वस्तु की इच्छा करता है, ना सोचती ना कांक्षति, प्रसन्न हो गया। इसका ये मतलब है कि ना तो शोक करता है कि ये मेरा चला गया, वो चला गया, ये नहीं होना चाहिए, ये हो गया, क्यों हो गया, शोक नहीं करता है। आकांक्षा नहीं करता है कि ये मुझे नहीं मिला, मुझे ये मिलना चाहिए, ये भी मुझे मिलना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए, ये नहीं होता है। वो प्रत्येक जीव के प्रति संभाव रखता है, समा सर्वेषु भूतेषु, सब प्राणियों के प्रति संभाव। नहीं ये पीला कपड़ा पहना तो ये जो है मेरे पक्ष का है, और ये लाल कपड़ा पहना ये मेरे पक्ष का नहीं है, ये दिल्ली का है ये मेरे पक्ष का है, ये पंजाबी है ये मेरे पक्ष का है, ये बंगाली मेरे पक्ष का है, ये जो है पाकिस्तानी है ये मेरा दुश्मन है, ये यूरोप का है ये मेरा दुश्मन है, समाज सर्वेषु भूतेषु, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्मचारी सब मेरे पक्ष के हैं, गृहस्थ सब मेरे दुश्मन है, ये सब नहीं है ना। समाज सर्वेषु भूतेषु, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, वो प्रत्येक जीव के प्रति संभाव रखता है, इस स्थिति में वह दिव्य कार्यकलाप या भगवत भक्ति प्रारंभ करता है। मद भक्तिम लभते पराम, तो मेरी भक्ति वो पराभक्ति प्राप्त करता है, यानी शुरू होती है उसकी भक्ति, उसकी भक्ति शुरू होती है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं सामान्यतया एक बार ब्रह्म सुख को प्राप्त मनुष्य फिर कभी नीचे नहीं आता है। तो आज के श्लोक में ही है क्या, चित्तम ब्रह्म सुख इस पृष्ठम न एव उत्तिष्ठेत, कि अब वो चित्त विद्रोह नहीं करेगा, ब्रह्म सुख उसको प्राप्त हो गया है। तो प्रबल के सामान्यतया एक बार ब्रह्म सुख को प्राप्त मनुष्य फिर कभी नीचे नहीं आता, किंतु यदि कोई भक्ति नहीं करता तो भौतिक जगत में वापस आने की संभावना बनी रहती है। ये प्रभुपाद समझा रहे हैं ना? किस आधार पर समझा रहे हैं? गीता के आधार पर। गीता का जो श्लोक प्रभुपाद ने उद्धृत किया है, इसमें क्या बताया है कि ब्रह्म भूत हो गया, प्रसन्नात्मा हो गया और ना सोचते ना कांक्षति भी हो गया, फिर समाह सर्वेशु भूतेशु भी हो गया, फिर मन भक्ति में लभते पराम, प्राप्त हो गई उसको मेरी पराभक्ति, और प्राप्त हो गई उसने फिर उसका प्रयोग नहीं किया तो फिर से उल्टी दिशा में जाएगा। तो गीता में भगवान कहते हैं कि मद भक्ति में लभते पराम, तो प्राप्त हो गई आपको, आपकी आपको प्राप्त हो गई है, जैसे टिकट प्राप्त हो गया अमेरिका जाने का, आपने उसका प्रयोग नहीं किया, नहीं गए अमेरिका, तो फिर क्या होंगे? उल्टी दिशा में। उसी प्रकार से भक्ति आपको प्राप्त हो गई लेकिन आपने भक्ति का प्रयोग नहीं किया, भक्तिया माम अभिजान आती यावान, तो भक्ति आपको कोई चीज़ प्राप्त होती है तो उसका आपको प्रयोग करना पड़ेगा ना। जैसे श्रीमद् भागवत की किताब आपको प्राप्त हो गई तो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसका लाभ उठाना पड़ेगा ना। भक्तों का संग प्राप्त हो गया आपको, यदि आप भक्तों का संग फिर भी नहीं करते तो क्या होगा? बेकार हो गया। भक्ति आपको प्राप्त हो गई लेकिन भक्ति का आप जो है लाभ नहीं उठाते, भक्ति का प्रयोग नहीं करते, तो फिर उल्टी दिशा में जाना पड़ेगा। और चित्त फिर क्या होगा? फिर से उठ करके खड़ा हो जाएगा उल्टा, मुझे नहीं चाहिए सब, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाल लिखते हैं कि सामान्यतया एक बार ब्रह्म सुख को प्राप्त मनुष्य फिर कभी नीचे नहीं आता, किंतु यदि कोई भक्ति नहीं करता तो भौतिक जगत में वापस आने की संभावना बनी रहती है। चित्त फिर उठ के खड़ा हो जाएगा, नहीं नहीं मुझे वापस जाना है, मुझे वापस लाओ इधर, कहाँ पर? इसी माया जगत में वापस लाओ। आगे प्रभुपाल लिखते हैं, आरोह्य श्रेण परम पदम तथा पतंत दो अनादृत युष्मदंग्रिया। ये भागवतम का श्लोक है। किसी को पता कहाँ का श्लोक है ये? कहाँ का है? दसवें स्कंद का दूसरा अध्याय है, देवताओं की स्तुति। ये नृविन्दाक्ष विमुक्त मानिनस त्वयस्त भावात अविशुद्ध बुद्धिया आरोह्य के क्षीर्ण परम पदम तथा पतंत दो अनादृत युष्मदंग्रिया। आरोह्य के क्षीर्ण परम पदम यहाँ पर है ब्रह्म सुख स्पृष्टम, और उसमें कहा है कि आरोह्य मैंने ऊपर उठ करके क्षीर्ण बड़े कष्ट पूर्वक, परम पदम परम पद तक भी बड़े कष्ट के साथ ऊपर उठ करके, पतंत यथो और नीचे गिर जाते हैं, अनादृत युष्मदंग्रिया आपके चरण कमलों का आदर ना करने के कारण। तो आपके चरण कमल उनको मिलते हैं लेकिन वो आदर नहीं करते हैं, और आदर नहीं किया अगर तो पतंत यदो तो नीचे गिर जाएगा चित्त, या इस श्लोक के शब्द में चित्त फिर से ऊपर खड़ा हो जाएगा, विद्रोह करेगा, है ना। तो यहाँ प्रभु लिखते हैं मनुष्य ब्रह्म सुख पद तक ऊपर जा सकता है, किंतु वह वहां से भी भौतिक जगत में गिर सकता है यदि वो अपने को भक्ति में नहीं लगाता। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो प्रभुपाद जो है इस श्लोक में अपनी एक बात ये जोड़ रहे हैं, एक ये बात जोड़ रहे हैं, है ना, क्योंकि भक्ति वेदांत तात्पर्य है। तो ब्रह्म सुख पर्याप्त नहीं है, प्रभुपाद जो है इस श्लोक के तात्पर्य में जो जिस बात पर जोर दे रहे हैं वो ये है कि ब्रह्म सुख पर्याप्त नहीं है, ब्रह्म सुख परम लक्ष्य नहीं है, है? चित्तम ब्रह्म सुख स्पृष्टम नैवो तिष्ठेत करिचेत, है ना। तो ब्रह्म से परमात्मा और परमात्मा से भगवान का साक्षात्कार आपको होना चाहिए, हरि बोल। नींद आ रही है? नींद आ रही है, ठीक है। रेस्ट नहीं किया है? अगर रेस्ट नहीं करते हैं तो क्लास में जरूर नींद आएगी, कथा में जरूर नींद आएगी। तुम्हें क्या बता रहा हूं, ब्रह्म सुख के बाद परमात्मा सुख, फिर परमात्मा सुख के बाद भगवान सुख। तो जब तक भगवान का सुख नहीं मिलेगा तब तक ब्रह्म सुख से काम नहीं चलता है। तो गीता में भगवान क्या कहते हैं, ब्रह्म भूतः प्रसन्न आत्मा ना सोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु, समस्त प्राणियों में समान, यानी परमात्मा का साक्षात्कार। और फिर मद भक्ति में लभ्यते परम, फिर मेरी भक्ति यानी भगवान की भक्ति। तो ब्रह्म का साक्षात्कार, फिर परमात्मा का साक्षात्कार, फिर भगवान का साक्षात्कार, मद भक्ति में लभ्यते परम। और फिर भगवान की भक्ति के द्वारा भगवान को जान पाता है। फिर उस यहाँ भी गाड़ी रुकती नहीं है और आगे चलती है गाड़ी, है भक्तिया माम अभी जान आती या वान यस्यास्मि तत्त्वतः। भक्ति के द्वारा मुझे जानता है, मैं जो भी हूँ और जैसा हूँ तत्त्व से मुझे जानता है। और तत्त्व माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम, तो मुझे तत्त्व से जान करके मेरे लीला में प्रवेश पाता है। विशते ने प्रवेश कर जाता है, है? किस में प्रवेश कर जाता है, मेरी लीला में प्रवेश कर जाता है। नित्य लीला प्रविष्ट रूपा को हम क्या कहते हैं, नित्य लीला प्रविष्ट, है ना। लेकिन वे लोग जो मायावादी लोग हैं, वो कोई शरीर छोड़ देता है तो क्या बोलते हैं, ब्रह्मलीन, ब्रह्मलीन। उनके लिए आदर का शब्द यही है, ब्रह्मलीन। शरीर छोड़ के चले गए तो क्या हो गए, ब्रह्म में लीन हो गए, है? लेकिन प्रभुपाद शरीर छोड़ के चले गए तो हम लोग क्या कहते हैं, नित्य लीला प्रविष्ट, नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। और नित्य लीला में जब प्रविष्ट होते हैं तो उनकी अपनी पहचान रहती है, लीला में उनका कोई उनका अभिनय होता है, कोई नाम होता है और कोई रूप भी है, वेशभूषा भी है। वो लीला नित्य चलती है। तो जब तक नित्य लीला में आप प्रविष्ट नहीं होते हैं तब तक आप सुरक्षित नहीं हैं। हरि बोल। नींद आ रही तो खड़े हो जाओ, फिर खड़े हो जाना चाहिए। नींद आ रही ना बहुत ज्यादा, खड़े हो जाना चाहिए। तो हाँ, प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ है। पिछले श्लोक में शब्द आया था निर्वाण, पिछले श्लोक में भी चित्त की ही बात थी। पिछले श्लोक में आप देखेंगे तो उसमें भी चित्तम है, एवं अभ्यसतस चित्तम चित्तम। तो पिछले श्लोक में चित्त की बात आई थी और उसने बताई थी कि उसका जो है चित्त का निर्माण हो जाता है, चित्त का निर्माण हो जाता है। किस तरह से निर्माण हो जाता है, जैसे कि अनिंधन वहिनी वत, अनिंधन वहिनी, वहिनी का मतलब अग्नि, अग्नि का निर्माण हो जाता है जब अनिंधन होती है। वो अनिंधन का मतलब ईंधन ना मिले, अग्नि में जो है ईंधन अगर आप नहीं देते हैं तो अग्नि क्या होती है, अनिंधन, ईंधन रहित होती है। और ईंधन रहित होती है तो क्या होती है, निर्वाण, मतलब शांत हो जाती है। तो इसी प्रकार से जो चित्त है वो आपका शांत हो जाता है, निर्वाण हो जाता है। तो इस श्लोक में भी चित्त की बात है, चित्त की तुलना अग्नि से की गई है। अनिंधन, ईंधन ना मिलने पर अग्नि शांत हो जाती है, काम की अग्नि शांत हो जाती है ना। और यहाँ पर आज इस श्लोक में काम आदि भी अनाविद्धम, तो इस तरह का श्लोक जो है भागवत में और भी कहीं पर है ना, पहले स्कंद में कहा, एवं तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयस्य चेत एतर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। काम लोभादयस्य, काम लोभ आदि जो रजोगुण तमोगुण के भाव हैं, चेत एते अनाविद्धम, चेत इनसे अनाविद्ध जब होता है तो सत्वगुण में प्रसन्न हो जाता है। तो काम लोभ आदि जो रजोगुण तमोगुण के भाव हैं, और यहां पर क्या है, काम आदि भी अनाविद्धम है, तो वही बात है ना, काम आदि भी अनाविद्धम चित्तम। तो भागवतम के पहले स्कंद के श्लोक में भी चित्त की ही बात बताई गई है, चेत एतय अनाविद्धम, चेत यहां पर चित्तम है, तो चेत एतय अनाविद्धम काम लोभादयस्य, रजोगुण तमोगुण के जो भाव हैं काम लोभ आदि, इनके द्वारा चित्त अनाविद्ध हो, अनाविद्ध हो तो प्रसन्न हो जाता है, सत्वगुण में प्रसन्न हो जाता है, है ना। अब आविद्धम विद्ध, एक तो होता विद्ध, चित्त विद्ध हो जाता है, काम से विद्ध हो जाता है, और दूसरा है चित्त विद्ध नहीं होता। तो ये किस तरह से है, काम बाण है, काम जो है बताया जाता है कामदेव के बाण, काम के जो है बाण होते हैं पंच बाण, पांच बाण है काम, तो काम जो है बाण जब मारता है तो हमारा चित्त अविद्ध हो जाता है, विद्ध हो जाता है, यानी वेध बाण जो है हमारे चित्त को वेध देता है, तो क्या बोलता है, हमारा चित्त विद्ध जाता है। बाण जो है अगर आर पार हो जाता है किसी चीज को, तो हम क्या कहते हैं, बाण से विद्ध हो गया, है ना, आविद्ध हो गया, बाण से चित्त आविद्ध हो गया, है ना, तो काम के बाण है। तो रजोगुण तमोगुण के जो भाव हैं वो बाण के समान है, और चित्त जो है इनसे आविद्ध हो जाता है, तो फिर चित्त प्रसन्न नहीं होता है, है? फिर क्या होता है, चित्र बेचैन होता है, काम क्रोध लोभ ये भी जो है बाण है, रजोगुण तमोगुण के भाव हैं, ये बाण की तरह हैं, ये चित्त को विद्ध कर देते हैं, तो चित्त फिर इनसे क्या होता है, अशांत होता है, बेचैन होता है, है ना। लेकिन नित्यम भागवत सेव्या, अगर नित्य भागवत सेवन करते हैं तो आपका चित्त फिर कितना अच्छी इसकी जो है मजबूत लेयर हो जाती है, कि काम का बाण लगता है लेकिन चित्त को बेध नहीं पाता है ना। चेत एतर अनाविद्धम, तो इन भावों के द्वारा काम क्रोध लोभ ये जो भाव हैं ये बाण की तरह हैं, ये लगते तो जरूर हैं, चोट मारते हैं, लेकिन आपके चित्त को ये बेध नहीं पाते, बेध नहीं पाते, तो फिर चित्त क्या होता है, प्रसन्न होता है, स्थितम सत्व प्रसिद्धति, तो चित्त प्रसन्न होता है, और बेध देता है तो फिर चित्त प्रसन्न नहीं होता है। जैसे महाभारत में आता है कि भीष्म देव के सामने शिखंडी युद्ध कर रहा है, तो भीष्म देव का पहले से ही नियम था कि शिखंडी अगर मेरे सामने युद्ध करेगा तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी दृष्टि में वो अभी भी स्त्री ही है, अंबा है, तो वही स्त्री, वही स्त्री जो है अभी पुरुष रूप में शिखंडी बनी हुई है, तो मैं उसके साथ युद्ध नहीं करूंगा। वो युद्ध के पहले ही भीष्म देव ने अपनी सूचना दे दी थी, तो दुर्योधन ने जो है बहुत अच्छी व्यवस्था की थी कि भीष्म के सामने शिखंडी ना आने पाए। लेकिन अब आज जो है अंतिम दिन था भीष्म देव के युद्ध का, तो ऐसी मतलब ऐसी स्थिति बन गई कि शिखंडी आया, और पहले से निश्चित कर दिया था कि शिखंडी युद्ध करेगा शिखंडी को, तो भीष्म देव जो है युद्ध नहीं कर रहे हैं, तो शिखंडी के जो बाण थे भीष्म देव की त्वचा में खरोंच भी नहीं पैदा कर रहे थे, शिखंडी के जो बाण थे वो भीष्म देव की त्वचा में खरोंच भी पैदा नहीं कर रहे थे, लेकिन अर्जुन बाण मारते थे तो वो जो है बेध देते थे, तो भीष्म देव कहते थे ये शिखंडी के बाण नहीं, ये अर्जुन के बाण हैं जो मेरी त्वचा को बेध करके मुझे कष्ट पहुंचाते हैं, और भीष्म देव अर्जुन की प्रशंसा भी कर रहे हैं इस इन बातों से कि अर्जुन के बाण ही मुझे मेरी त्वचा को बेंधते हैं, मेरी त्वचा आविद्ध हो जाती है अर्जुन के बाणों से और कष्ट पहुंचाती है, ये शिखंडी के बाण नहीं, ये अर्जुन के बाण हैं, अर्जुन के बाणों ने ही जो है भीष्म देव के शरीर को आर पार किया, और पूरा शरीर विद्ध हो गया बाणों से, बाण विद्ध हो गया पूरा, और फिर भीष्मदेव जब गिरे तो जमीन पर नहीं गिरे, बाणों की सैया पर गिरे, क्योंकि आर पार थे बाण, तो बाणों की सैया पर गिरे। लेकिन अर्जुन की प्रशंसा करते हैं कि अर्जुन में ऐसी शक्ति है कि मेरे शरीर को आर पार, अर्जुन के बाण जो है मेरे शरीर को आर पार कर रहे हैं। तो ये जो है विद्य कहते हैं, चेत एते अनाविद्यम। तो चित्त जो है, अगर आप भागवत की विधि अपनाते हैं, नित्यम भागवत सेवया, तो आपका चित्त फिर कैसा हो जाएगा? भीष्म देव की त्वचा की तरह कठोर हो जाएगा। और ये काम क्रोध लोभ आदि ये जो बाण हैं, ये शिखंडी के बाण की तरह हो जाएंगे, आपकी त्वचा को, आपके चित्त को भेद नहीं पाएंगे, भेद नहीं पाएंगे, है ना। आता है काम क्रोध के जो भाव हैं, आते हैं, विचार आते हैं, लेकिन आपके चित्त को भेद नहीं पाते हैं। और चित्त आपका सतोगुण में प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न होता है। हरि बोल, नींद आ रही है? वो खड़ा हो गया, आप भी खड़े हो जाओ, नींद आ रही तो खड़े हो जाओ। चेत एते अनाविद्यम, है ना। तो आज के श्लोक की जो चर्चा है वो यही है, इतनी ही है चर्चा। और विष्णु प्रिया देवी ने इस श्लोक का जो हिंदी पद्यानुवाद लिखा है, जब कामना वासना आहत उसको नहीं करे, ये हिंदी कविता में अनुवाद है, जब कामना वासना आहत उसको नहीं करे और समस्त वृत्तियां भी उस साधक की शांत हो, ब्रह्मानंद के संस्पर्श में जब चित्त मग्न हो जाता है, ऐसे चित्त का पुनः कहें उत्थान नहीं हो पाता है। तो आज के श्लोक की इतनी चर्चा है। अब आप लोगों की ओर से कोई चर्चा है या कोई प्रश्न है? हाँ जी बोलिए, हैंड माइक है। हाँ, विचार आएंगे, विचार आते हैं। ये उसी तरह से है जैसे कि बच्चा जो है, छोटा बच्चा होता है, तो उसके मन में जब विचार आता है कि मुझे टॉफ़ी खानी है, तो जो है वो बड़ा व्यग्र हो जाता है कि मुझे टॉफ़ी खानी है। और जब आप बड़े हो जाते हैं तो टॉफ़ी देखते हैं तो आपके अंदर भी विचार आता है टॉफ़ी खाने का, लेकिन फिर विशेष उसका जो है प्रभाव नहीं पड़ता आपके अंदर, कोई खास नहीं है, आप समझ रहे। तो विचार तो आता है, तो आपको बहुत ऐसे विचारों का अनुभव है कि विचार आता है लेकिन इतना आप प्रभाव नहीं पड़ता। और ये आपको जो है रोज देखना है कि आपके मन में विचार आता है लेकिन अब प्रभाव उतना नहीं पड़ रहा है, आप में जो है सत्वगुण का कुछ इतना प्रभाव आ गया है कि रजोगुण तमोगुण के विचार पहले आते थे और जितना बेचैनी होती थी चित्त में, अभी उतनी तो नहीं हो रही है ना। तो अब पहले जो 100% बेचैनी होती थी तो अभी 90% है, 10% कम हुई है। तो ये भी एक उन्नति है कि नहीं। आप जब से नित्यम भागवत सेविया कर रहे हैं, नित्यम मंगल आरती कर रहे हैं, नित्यम 16 माला जप कर रहे हैं, तो आप अपने अंदर परिवर्तन देखेंगे। तो क्या एकदम से थोड़ी होगा कि 100% से 0% हो गया, क्या ऐसा होता है? नहीं, कोई बीमारी भी ठीक होती है तो 100% बीमारी थी तो अभी आप कहते हैं भाई 5% फायदा हुआ है, क्या मतलब 95% बीमारी है, फिर कहते हैं आप 10% फायदा हुआ है, इसके मतलब 90% बीमारी है। तो इसी तरह से बीमारी ठीक होती है ना, तो काम की बीमारी, काम क्रोध की बीमारी, तो अब वो भी जो है आपकी जो है ठीक हो रही है, तो कैसे ठीक हो रही है? उसी प्रकार से ठीक हो रही है। नित्यम भागवत सेविया भगवती उत्तम श्लोक भक्तिर्भवती नैष्ठिकी तथा रजस्तमो भाव काम लोभाद यस्ये चेत एतेना विधम इष्टम सत्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्ति संघर्ष जायते है ना। नष्ट प्रायश भद्रेशु, नष्ट प्रायश भद्रेशु, अभद्र जो है प्राय नष्ट हो जाते हैं, तो इसमें बताया गया 75% नष्ट प्रायश भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया है ना, जो बताया ना भगवती उत्तम श्लोक भक्तिर्भवती नष्ट की नहीं, वो किस तरह से नष्ट प्रायश भद्रेशु नहीं, उसके पहले श्रृण्वताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो है भद्राणी विधुनोति सुहृतताम तो नष्ट प्रायश भद्रेशु, तो निष्ठा का जो धरातल है उसमें अभद्र प्रायः नष्ट हो जाते हैं, तो प्रायः नष्ट होते हैं मतलब 75% नष्ट हो जाते हैं, प्रायः नष्ट होते हैं, ठीक है ना। तो ये होते हैं, अभी भी आपके दिमाग में वो विचार आता है, लेकिन अब जो है प्रभाव उसका बहुत कम हो गया है, और इतना कम हो गया है कि आप प्रसन्न रह सकते हैं, है ना। तो वो आता है विचार, है ना, पहले बाण लगता था और चित्त के आर पार हो जाता था, कितना कष्ट होता है, कोई चीज लगे आपके, कांटा लगे और आर पार हो जाए हैं, तो कितना कष्ट होता है। फिर आगे चल करके वही कांटा जो है आपको लगता है लेकिन आर पार नहीं हुआ, थोड़ा सा लगा और निकल गया बाहर, खरोंच भी नहीं हुई, तो आप जो है फिर ज़्यादा चिंता नहीं करते कि नहीं। तो ये जो है मतलब उन्नति का ये लक्षण है, ठीक है। हाँ
तो जैसे इसमें है भगवत में अलग अलग जगह सतगुण को विकसित करने का बहुत जोर दिया गया है, तो हम साधक के रूप में किस चीज पे ज्यादा फोकस करें, कृष्ण की स्मरण और सेवा में या सतगुण विकसित।
सभी कार्य दिव्य हैं, प्रभुपाद ने जो भी दिन भर का कार्यक्रम बनाया है, सवेरे शाम का कार्यक्रम जो बनाया है प्रभुपाद ने, तो वो जो है दिव्य है। दिन भर जो है आप सेवा में लगे हैं, उसमें भी आप हरे कृष्णा आप बोलते रहिए, जो नाम है तो ये सबसे सुलभ है। बाकी जो कार्य होते हैं सेवा के या भक्ति के, तो उनमें हो सकता है कि आप ठीक से लग पाए ना लग पाए, या वैसे जो स्थितियां बन पाए ना बन पाए, जैसे क्लास है तो क्लास हमेशा तो ऐसा सुयोग नहीं मिलेगा कि आप सुन सकेंगे क्लास, तो नाम जप आप जो है हर समय कर सकते हैं। लेकिन हाँ आजकल की टेक्नोलॉजी में सुनने का भी बहुत मतलब ये सुविधा है कि आपने मशीन लगा ली कान में तो आप सुन सकते हैं, तो पहले तो नहीं थी, तो नाम का ही केवल उपाय था, लेकिन अभी आपके पास जो है टेक्नोलॉजी से ये सुनने का भी बहुत अच्छा आपको जो है अवसर मिल गया कि आप सुन सकते हैं, है ना, तो ये इसका भी फायदा आप उठा सकते हैं। लेकिन अगर मशीन काम नहीं कर रही तो नाम का जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये तो आपको हमेशा बोलना है। और अगर पूरा मंत्र नहीं बोल सकते तो हरे कृष्णा कृष्णा, उठते बैठते क्या बोलते हैं कृष्णा है? हे कृष्णा, है ना। तो नाम का जो उच्चारण है ये कलयुग में एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी सुविधा है कि आपके मुख से नाम निकलता है। काम से क्रोध से आपका चित्त व्याकुल है तो भी अभ्यास करिए कि नाम चलता रहे हरे कृष्णा, ठीक है ना। तो हर हालत में आपको जो है नाम का प्रयोग करना है, एकमात्र गति, एकमात्र रक्षा इसी से, हरे नाम हरे नाम एव केवलम, एकमात्र रक्षा है ना। तो जितनी और विधियां हैं सब दिव्य हैं, लेकिन हमेशा सुलभ नहीं होती, नाम हमेशा सुलभ है। इस दृष्टि से नाम जो है सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन ये नहीं सोचना कि फिर हमें ये सब नहीं करना है, क्योंकि ये और आगे की हैं, ये सब और आगे की चीज़ें हैं जो कि शुद्धिकरण आपको देंगी। लेकिन ये अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको अपनी सुरक्षा नाम के द्वारा हमेशा करना है। नाम ही आपको और सेवा देता है, और सुनने का भी अवसर मिलता है, भक्तों का संग मिलता है, नाम के द्वारा मिलता है। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है, हमेशा अवसर नहीं मिलता है, तो आप नाम का जो है जप करते रहिए, ठीक है ना। और कोई? हाँ जी, हैं अच्छा, ठीक है जी, पूछिए।
धन्यवाद। तो जी मैं ऐसे काफी से प्रतीक्षा कर रहा था कि आप आएंगे, तो पूछना चाह रहा था, अवसर मिला है। तो जी ऐसे कई बार यहाँ पर हमें सुनने के लिए सुनते हम लोग यहाँ पर कि राम नाम से केवल मोक्ष मोक्ष मिलता है, और कृष्ण नाम से जो कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो
नाम की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। राम से भी प्रेम मिल सकता है, और उसमें जो है हम जब लीलाओं में पहुंचते हैं, भगवान की जब तक लीलाओं में प्रवेश नहीं होते हैं, तब तक हमारी जो है स्थिति पूरी नहीं है, पूर्ण नहीं, पूर्णता नहीं है, जब तक हम भगवान की लीलाओं में प्रवेश नहीं करते, तो वो प्रेम का धरातल है। लेकिन राम नाम में जो है बड़ी शक्ति है, ये जल्दी से मुख से निकलता भी है, बोलने में ये बहुत सुविधाजनक है राम, और इससे हमारी बहुत जल्दी रक्षा होती है। कृष्ण आप बोलते हैं तो इसमें ज़्यादा परिश्रम होता है, दूसरे नाम आप बोलते हैं तो इसमें परिश्रम होता है, राम जो है बहुत आसान है। जो रत्नाकर नाम का डाकू था, तो उसको तो नारद जी ने कहा कि मरा मरा बोलो। ऐसा नहीं कि राम नहीं बोल पाते थे, ऐसे कई बार कहा जाता है कि राम नहीं बोल पाते थे, तो ऐसी बात नहीं है, राम नहीं बोल पाते थे, राम बोल सकते थे, लेकिन उनकी जो है श्रद्धा नहीं थी भगवान में, तो उन्होंने मरा कहा कि तुम मरा मंत्र बोलो, जो कि नाम नहीं है, किसी का नाम नहीं, तुम मरा बोलो। तो ये अक्षरों में इतनी शक्ति है, ये मंत्र मंत्र के रूप में हम जब नाम बोलते हैं तो इसमें बड़ी शक्ति है। ये शुद्ध नाम नहीं होता है, लेकिन ये नाम का आभास होता है। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र है जो 16 नाम है, तो ये जो है सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें जो है कृष्ण का भी नाम है, राम का भी नाम है, और हरा जो भगवान की आलादनी शक्ति है वो भी इसमें है। लेकिन फिर भी शुरू में तो हम मंत्र ही मंत्र के रूप में उच्चारण कर रहे हैं, और जब मंत्र के रूप में उच्चारण कर रहे हैं तो ये जो है हमें हमारी सुरक्षा, हमें सुरक्षा देगा। अजामिल ने भी नारायण नाम का उच्चारण किया था, है ना, तो उसको उसकी क्या हुई, रक्षा हुई ना, नरक में जाने से रक्षा हुई, है ना। तो अभी तो हमारी यही आवश्यकता है कि हमारी रक्षा हो, बहुत कष्ट हैं, बड़े संकट हैं, रक्षा हो, तो अजामिल की रक्षा हो गई, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन आगे जो है जब रक्षा होती है तो हमें भक्तों का संग मिलता है, फिर हम और आगे बढ़ते हैं, तो इसमें कुछ विरोध नहीं है। आपकी रक्षा होती है ना, और फिर इससे आपको और बढ़ने, आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, भक्तों का संग मिलता है, तो आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना।
हम समझ लेते हैं कि कृष्ण नाम से कृष्ण प्रेम मिलेगा, राम नाम से राम प्रेम मिलेगा, इसमें क्या है?
उसमें कुछ अंतर नहीं है। आप जो है राम कथा सुनते हैं और राम नाम उच्चारण करते हैं तो ये भी आपको शुद्ध करता है, और उससे भी आप जो है राम के प्रेम से आप कृष्ण के प्रेम में भी जा सकते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु के समय में एक ब्राह्मण था ना, तो जब चैतन्य महाप्रभु के घर में ठहरे तो वो हमेशा राम का नाम लेता था, तो उसका बहुत मतलब लगाव था और राम के मतलब राम में लगाव था, भगवान राम के जो है प्रति उसका लगाव था। लेकिन जब दूसरी बार चैतन्य महाप्रभु दोबारा लौट करके आए तो उसके घर में ठहरे तो वो कृष्ण नाम का उच्चारण करता था। तो चैतन्य महाप्रभु पूछा कि तुम पहले राम का ही उच्चारण करते थे, अभी कृष्ण का उच्चारण कर रहे हैं, तो क्या कारण है? तो उसने कहा कि मुझे समझ आ गया कि आप तो साक्षात कृष्ण हैं और मेरा जो है अब जो आकर्षण है वो राम से अब कृष्ण की ओर हो गया है, है ना। तो इसमें कोई विरोध नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है, है ना। लेकिन कुछ भक्त लोग दोष मानते हैं तो वो भी उनकी भावना है कि वो दोष मानते हैं। मुरारी गुप्त चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं तुम कृष्ण से प्रेम करो, तो उनको जो है लगा कि मैं राम को छोड़ रहा हूँ। तो जिनका स्वरूप राम की सेवा में है तो उनको दिखाई पड़ता है कि बड़ा दोष होगा अगर मैं राम को छोड़ दूंगा, और जिनका स्वरूप कृष्ण की सेवा में है तो फिर राम को जो है फिर वो कृष्ण है, उनके लिए राम ही कृष्ण बन जाते हैं, वही राम ही उनके लिए कृष्ण बन जाते हैं, तो उनको कोई दोष ही नहीं लगता है ना। जिनका स्वरूप राम की सेवा में है तो उनको लगता है मैं राम को छोड़ रहा हूँ, ये तो मेरा बहुत अन्याय हो जाएगा, मैं राम को नहीं छोड़ सकता है। लेकिन जो कृष्ण के जिनका स्वरूप कृष्ण की सेवा में है तो उनके लिए वो राम ही जो है वो क्या हो जाते हैं, कृष्ण बन जाते हैं, है? वो कहते हैं अरे है? ये तो मेरे कृष्ण ही हैं, आप समझे, तो फिर कहाँ दोष लगेगा है? तो उदाहरण वही, जैसे ब्राह्मण था तो उसने जो है मतलब अब कृष्ण का उच्चारण कर रहा है तो उसको अब उसको राम का जो आकर्षण है वो कृष्ण के आकर्षण में परिवर्तित हो गया, उसमें उसने छोड़ा नहीं, उसको लगा जैसे कि मतलब आप ही जो है अपना बेस बदल करके आ गए, मैं आपको समझ रहा हूँ कोई दूसरा व्यक्ति समझ रहा हूँ, और फिर बाद में पता चला कि अरे तो वो है, क्या नाम आपका, पुरुषोत्तम नहीं आपका नाम, पुरुषोत्तम पाद सेवन, पाद सेवक, पाद सेवक, अरे तो पाद सेवक है, तो पाद सेवक में बोल रहा हूँ, पहले मैं बोल रहा था पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम है, अरे ये तो पाद सेवक है, तो कुछ छोड़ा ही नहीं, तो इसमें कोई दोष की बात ही नहीं है कि भाई दोष लगा, आप समझे ना। तो इस तरह के भी बहुत से उदाहरण हैं, और कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं कि वो रात भर रोए कि मुझे राम को छोड़ना पड़ेगा, ये तो मेरे से बड़ा अन्याय हो रहा है, मैं राम को नहीं छोड़ सकता, तो ऐसे उदाहरण हैं। और कुछ लोगों ने छोड़ दिया और बड़े खुशी खुशी छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने छोड़ा ही नहीं, उनके राम ही जो है क्या हो गए, कृष्ण हो गए, है ना। पीछे हाथ उठाए, पीछे तो पहले उनको दीजिए।
हरे कृष्ण, थोड़ी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ये भी सुनते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम लेना राम नाम के बराबर है, तीन बार राम लेना कृष्ण नाम के बराबर, तो इस प्रकार क्यों बताया जाता है, भगवान का नाम तो एक ही है, फिर कंपैरिजन क्यों किया जाता है?
ये अंतर जो है ये किया भी जाता है और नहीं भी किया जाता है, दोनों बातें हैं। ये जो है आभास, जब नाम का आभास आप उच्चारण कर रहे हैं, वो शुद्ध नाम नहीं हो रहा है, नाम का आभास उच्चारण कर रहे हैं, तो उसमें कुछ नाम ऐसे हैं जिनका ज़्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि आप किसी का भी नाम बोल रहे हैं, है ना। जैसे कमल लोचन, तो भगवान का नाम तो है कमल लोचन, लेकिन इसमें आप जो है वैसे शब्द बोल रहे हैं कमल लोचन, तो इसमें आपका जो है इतना आपकी शुद्धि नहीं होगी जितनी शुद्धि राम नाम से होगी, क्योंकि मुख्य नाम है कृष्ण के नाम से, क्योंकि ये मुख्य नाम है, है ना। अजा मैंने नारायण नाम का उच्चारण किया तो उसकी शुद्धि जो है मतलब जितनी हुई नारायण के नाम से, उतनी शुद्धि कमल लोचन के नाम से नहीं होती, वो अपने पुत्र को बुला रहा है कमल लोचन, आप समझ रहे हैं ना। तो उतनी शुद्धि नहीं होती। लेकिन ये नाम जो है जो मुख्य नाम होता है, दूसरे गौण नाम है, तो गौण नाम है तो कमल लोचन, किसी को भी कमल लोचन कहा जा सकता है, कमल के समान नेत्र वाला, तो भगवान का भी नाम है, लेकिन इसमें इतना प्रभाव नहीं है, आप समझ रहे हैं। तो कृष्ण नाम ये मुख्य नाम है ना, तो ये इसलिए जो है इनका ज्यादा असर पड़ता है। लेकिन जब शुद्ध नाम बन जाता है, शुद्ध नाम बन जाता है, जैसे द्रौपदी, तो कृष्ण द्वारकावासी, अब वो द्वारकावासी भी अगर बोल रही है कृष्ण को द्वारकावासी, तो भी वो शुद्ध नाम है, क्योंकि उसके दिमाग में कृष्ण का ही व्यक्तित्व है ना, तो उसके दिमाग में तो कृष्ण का स्वरूप, कृष्ण का रूप भी साथ साथ शामिल हो गया है, आप समझे। लेकिन जब नाम में कोई रूप नहीं है, कोई गुण भी नहीं है, आप कुछ नहीं चिंता, केवल नाम शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, एक मंत्र है ये, तो मंत्र की शक्ति जो है कमल लोचन में वो नहीं है, कमल नाभ है, बहुत से नाम है भगवान के, तो उनमें मंत्र की शक्ति नहीं है उतनी जितनी कृष्ण नाम में है या राम नाम में है, है ना। नारायण नाम भी जो है शक्तिशाली है, लेकिन ज़्यादा शक्तिशाली कृष्ण का नाम है, राम का नाम, राम के नाम से 3 गुना शक्तिशाली कृष्ण का नाम है। तो ये उस समय इनका अंतर देखा जाता है कि मंत्र की शक्ति जो है, आप मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, केवल शब्द ध्वनि उच्चारण कर रहे हैं, आप उसमें कोई व्यक्ति का चिंतन नहीं कर रहे हैं, किसी रूप का, किसी के गुणों का चिंतन नहीं कर रहे हैं, या किसी व्यक्ति का चिंतन कर रहे हैं तो कोई व्यक्ति का चिंतन करे, भगवान का नहीं चिंतन करे। या जामिल नारायण पुकार रहा है तो अपने पुत्र को पुकार रहा है नारायण, तो वो शुद्ध नाम तो नहीं है, लेकिन मंत्र की शक्ति जो है उसमें है, आप समझ रहे हैं। जी जी, नहीं, लेकिन कृष्ण नाम में जो है ज्यादा शक्ति, ज्यादा मुख्य है, मुख्यता जो है कृष्ण के नाम की ज्यादा है, मुख्यतरम मुख्य नाम है, मुख्यतर और मुख्यतम, इसमें भी जो है डिग्री है, आप समझे, जैसे नियर नियरर नियरेस्ट होता है ना, तो इस तरह से होता है, इम्पोर्टेंट मोर इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ना, मुख्य मुख्यतर मुख्यतम है ना, तो मुख्य में भी जो है भेद है, कुछ अंतर है, ठीक है, धन्यवाद। अच्छा आपका प्रश्न, हाँ ठीक है, आखिरी प्रश्न बोलिए। भेद भी है और भेद नहीं भी है, दोनों बातें हैं। जो राम से आकर्षित थे, जो जनकपुर वासी स्त्रियां थी राम से आकर्षित थी, तो वो कृष्ण के प्रति आकर्षित हो रही हैं, तो उनका भाव वही है कि ये वही है जनकपुर वासी राम है, ये उस भाव से वो आकर्षित हो रहे हैं कि जनकपुर वासी राम ही है, ये इस भाव से भी आकर्षित हो रही हैं, इस तरह से भी होता है। और फिर किसी का जो है अगर स्वरूप है कृष्ण के प्रेम में, तो फिर उनके वही जनकपुर वासी राम, जब जनकपुर में आए थे राम, वही जो है अब कृष्ण रूप में परिणत हो गए, अब उनकी ब्रज में जो है उनका जो है भाव, ब्रज का भाव पैदा हो गया, तो ब्रज का भाव भी पैदा हो सकता है, तो वो जो है ब्रज, वो गोलोक धाम में जाएंगे और ब्रज की लीला में प्रविष्ट करेंगे। लेकिन कुछ हैं भक्त, अगर वो राम के प्रति आकर्षित हो रहे हैं और राम का ही उनके दिमाग में भाव बना हुआ है, तो वो राम के धाम में जाएंगे, तो ये भी हो सकता है, तो सब कुछ है कृष्ण में, सब कुछ है ना। कोई जो है अगर कृष्ण से अगर चाहता है, रामचंद्र का प्रेम पाना चाहता है, तो वो प्रेम देंगे, और भगवान राम से हम कृष्ण प्रेम पाना चाहते हैं तो भी कृष्ण प्रेम देंगे, आप समझे, तो कोई इसमें विरोधी की बात नहीं है, ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।